Miradish, Miradish, Mirilu, Mirilu, Mira, Mira, Bharat Bolega, Bharat Bolega, Bharat Bolega.
नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं भारत बोलेगा और मैं हूँ सुरभि, जहाँ है जानकारी भी समझदारी भी। और एक वक्त हुआ करता था जब लोग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, या फिर ये कहें कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये कुछ ऐसी कहावतें हैं जो हमने अक्सर सुनी है, लेकिन इस समय जो माहौल चल रहा है हमारे देश का, ऐसे में शिक्षा कहीं रुक सी गई है। और आप सभी जानते हैं कि हम इस समय एक ऐसी महामारी से गुजर रहे हैं जिसके बारे में अगर हम बात करें तो शायद हम अपने आप को घर में बंद पाते हैं, लॉकडाउन में पाते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो फैसला लिया है सभी उसका सम्मान कर रहे हैं। और अभी हम सब घर में बंद हैं, बच्चों के स्कूल बंद हो गए हैं, आगे सेशन का क्या होगा इस पर भी अभी तक कोई बात नहीं हो पाई है। ऐसे में हम आज बात करने वाले हैं विवेक यादव जी से, जो इटावा से बिलोंग करते हैं और जो शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और टेक्निकल शिक्षा, या ये कहा जाए कि शिक्षा माध्यम से काफी हद तक जुड़े हुए हैं, जो इटावा में डीपीएस मदनलाल और स्वतंत्र विवेकानंद और अर्चना मेमोरियल जो स्कूल है इनके चेयरमैन हैं और शिक्षा को काफी हद तक पास से देख रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम उनका स्वागत करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और कुछ सवाल लेकर आए हैं जो उनसे जानेंगे, जो आपको भी इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं। तो विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार है भारत बोलेगा पर आपका।
नमस्कार, नमस्कार सुरभि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने जो मुझे इस कार्यक्रम में बोलने का अवसर दिया।
जी तो विवेक जी, सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए, हो सकता है कि कुछ मुझसे रह गया हो। शिक्षा से आप कैसे जुड़े हुए हैं और कौन कौन से संस्थान है इटावा में जिन्हें इस समय आप देख रहे हैं?
सुरभ जी, काफी अधिक तो आपने मेरे बताया है, ज्यादा कुछ बताने को ऐसा है नहीं, क्योंकि शिक्षा मेरे स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय श्री मदनलाल जी, उन्होंने इटावा में संत विवेकानंद स्कूल की स्थापना की। उसके बाद उसके साथ साथ उन्होंने यूपी बोर्ड के भी अन्य विद्यालय अर्चना मेमोरियल और बाकी सब विद्यालयों की स्थापना की। जब चूंकि मैं घर में परिवार में बड़ा था तो मुझे कुछ जिम्मेदारियां मिली, मैं अपने काम के साथ साथ मुझे ये अवसर भी मिला कि मैं शिक्षा के साथ अपनी समाज सेवा भी कर सकता हूँ। तो मैंने उसी को अपने प्रयास करते हुए फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल स्थापना की इटावा। इस बीच मेरे पिताजी गुजर गए तो मैंने उनकी याद में, चूंकि वो हम सबके गुरु भी हैं, मैंने टेक्निकल एजुकेशन में इंस्टीट्यूशन की स्थापना की जिसमें हम पापे से ये MBA BBA BCA BEd और DLED प्रोग्राम हम चलाते हैं। आप कह सकते हैं कि हम प्रयास है कि हम इटावा शहर में और इटावा जनपद में हम अंडर, मतलब ये कह सकते हैं UKG से लेकर और हम टेक्निकल एजुकेशन में PhD प्रोग्राम तक सारी शिक्षाओं में हम काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम दे सकें। अभी कुछ समय पहले हमने मध्य प्रदेश में भी भिंड में ये इटावा से लगा हुआ क्षेत्र, वहाँ भी एक स्कूल स्टार्ट किया संत विवेकानंद की नई शाखा शुरू, प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा कार्य। और चूंकि पिछले क्षेत्रों में इटावा भिंड ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे शिक्षा की आवश्यकता बहुत अधिक है, सबसे पिछले जिलों में से प्रयास कर रहे हैं।
तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, ये जो आपने बताया कि इस समय जो माहौल चल रहा है कोरोना से रिलेटेड, इटावा में किस हद तक चल रहा है?
देखिए, आज जैसा कि आज तक की जो जानकारी है उससे ये हुआ कि पहले अभी तक तो इटावा में बहुत किसी तरह की बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी। दो केसेस इटावा में आइडेंटिफाई हुए हैं कि दो केसेस हुए हैं, चिंता की बात है, सब लोगों के लिए चिंता की बात है कि हमारे छोटे से शहर में भी दो केसेस हमें मिले हैं और किसी ऐसे संक्रमित हुए हैं। सरकार उनको सुरक्षित भी कर रही है, उनका उपचार भी कर रही है। जरूरत है हम सबको क्वारंटाइन लेने की, लॉकडाउन में रहे हैं और जो लॉकडाउन के जो नियम है उनका पालन करें।
जी बिल्कुल, तो ऐसे में जो हमारे जो बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनके भविष्य के बारे में अगर हम आपसे पूछें तो ये स्कूल कब तक खुल सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कुछ शिक्षा आपके यहाँ से भी शुरू हुई है क्या?
लेकिन स्कूल खुलना चूंकि ये सरकार को निर्णय करना है, लेकिन मेरे व्यक्तिगत समझ है लॉकडाउन और स्कूल खुलना दो अलग अलग विषय हैं। लॉकडाउन खुलना बहुत एक अलग विषय है, स्कूल खुलना एक अलग विषय है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद आपको एक निश्चित दूरी बना के रखनी होती है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है आपको। जो छोटे बच्चे या बच्चों के साथ रहना बहुत मुश्किल काम है, स्कूल खोलना या कॉलेजेस खोलने के लिए बड़ा मुश्किल है कि सरकार कितनी भी ये बड़ा सोचनीय बात है हम सबके लिए कि स्कूल एक लंबे समय तक शायद ना खुल पाए।
जी
क्योंकि स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप स्कूलों में आप प्लेसेस आइडेंटिफाई करने होंगे, हम स्कूलों में सैनिटाइज कर सकते हैं, बच्चों को भी सिखा सकते हैं, क्लासरूम में आप सोशल डिस्टेंसिंग करना बड़ा मुश्किल है। बच्चे भी बसेस में आएंगे, जिस बसेस में संख्या होगी मान लीजिए बस में आपकी 50 सीट बस है तो 50 बच्चे बैठे होंगे, या आप उनको आधे करेंगे तो आधे बच्चे कैसे आएंगे?
जी
ये बड़ा मुश्किल विषय है। इसमें ये बात कहना कि स्कूल कब तक खुलेंगे, और ये दावा या भारत देश के लिए नहीं है, पूरे विश्व में ये बड़ी अभी तक चिंतनीय बात है कि स्कूल खुलना बहुत दिक्कत वाला काम है। आइए जरूर है आपका एक और प्रश्न है कि स्कूल नहीं खुलेंगे तो बच्चों की शिक्षा कैसे होगी। हम लोगों ने प्रयास शुरू कर दिए हैं, हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के साथ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के साथ काम कर रहे हैं और अपने अपने टीचर्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग करा के और बच्चों को भी ऑनलाइन हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस देना शुरू कर दिया। उसको ऑनलाइन क्लासेस ना कहें ऑनलाइन स्कूल कहे तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि हमने लगभग सभी विषयों की पढ़ाई शुरू कर 9 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में हम लगातार 40-40 मिनट के हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, हमारे टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं, लाइव क्लासेस हैं। और इसमें हमारे टीचर्स का मैं बहुत बहुत उनको बधाई भी दूंगा और बहुत बहुत उनकी मेहनत का भी नतीजा है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, सीखा, और हमारे बच्चों में भी हमारे पेरेंट्स ने भी सहयोग करके उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया और आज सभी बच्चे हम उनको उस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम पढ़ा रहे हैं।
अरे वाह, तो ये कौन से मतलब किस क्लास के बच्चों के लिए आपने ये सुविधा शुरू करवाई है?
आप विश्वास नहीं बनेंगे, हमने अपने प्ले स्कूल में भी ये सुविधा शुरू की है। हम प्ले स्कूल से लेकर अपने सभी लगभग पोस्ट ग्रेजुएट करके बच्चों को सबको पढ़ा रहे हैं, जिसमें यूकेजी के भी बच्चे हैं, उसमें क्लास फिफ्थ के भी बच्चे हैं, क्लास फर्स्ट के भी बच्चे हैं, 9th-10th के बच्चे भी हैं, 11th-12th के भी हैं, उसमें अपनी बीबीए की क्लासेस भी चला रहे हैं, हम उसमें बीएड की क्लासेस भी चला रहे हैं, डीएलएड क्लासेस भी चला रहे हैं, बीटीसी की भी क्लासेस चल रही हैं, फार्मेसी के भी लेक्चर्स हो रहे हैं, सभी तरह की जितनी भी शिक्षा है जो हम दे रहे हैं सभी में हम उसको उस एप्लीकेशन के थ्रू हम उसको पढ़ा रहे हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ जुड़ने का एक वजह ये थी कि जैसे आज मैं आपको कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा, सरकार ने भी कहा है कि जूम एक से प्लेस गई, तो ये बात हमें पहले से थोड़ा सा पता था, कमिटी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करके उसको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, टीचर्स को पहले ट्रेन किया और ट्रेन करने के बाद सारे टीचर्स अब हमारे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं, सभी विषय पढ़ा रहे हैं, सभी क्लास को पढ़ा रहे हैं।
ये तो बहुत बढ़िया अच्छी और बात बताई आपने, क्योंकि अभी तक इस विषय पर कोई बात इतनी हो नहीं पाई है मुझे लगता है। अच्छा ये बताइए, जो अभी जो सेशन अभी जा रहा है, जिसके रिजल्ट आने वाले थे या फिर कुछ एग्जाम्स होने वाले थे जो रुक गए हैं, इनका क्या मतलब फ्यूचर है, क्या भविष्य है, क्या ये एग्जाम्स होंगे और रिजल्ट कैसे तैयार किया जाएगा, जिसमें 10th और 12th वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी, उनके बारे में भी थोड़ा बताइए अगर आपके पास कुछ इसके बारे में नॉलेज हो या जानकारी हो तो।
देखिए लगभग उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड ने और सीबीएसई ने भी लगभग इंस्ट्रक्शन सभी स्कूल को दे दी है कि लगभग सभी क्लास के बच्चे अप टू 9th, क्लास फर्स्ट से लेकर 9th तक की बात करें, 11th की स्वीमिंग में, और इनको यूपी बोर्ड ने आदेश जारी किए हैं कि भाई इन सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए, यदि इनकी परीक्षाएं हो गई हैं तो भी, और इनकी परीक्षा नहीं भी हो पाई है। सौभाग्यवश हमने हमारे सभी स्कूलों में यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में सभी स्कूलों में हमारी परीक्षा हो चुकी थी इन क्लासेस की, और यूपी बोर्ड की चूंकि परीक्षा चल रही थी तो वहां भी बताई थी, वहां इंस्ट्रक्शन हो गए। देखिए जो बच्चों की, जिन बच्चों की परीक्षा कक्षा 10 और 12 को छोड़कर मैं बात कर रहा हूँ, उनको सबको बच्चों को जिनकी परीक्षाएं हो गई हैं और जिनकी परीक्षा नहीं भी हो गई है उन सबको प्रमोट कर दिया गया
जी।
अब अलग अलग जो उनकी रेस्पेक्टेड क्लासेस हैं उनमें उनको प्रमोट कर दिया गया। अच्छा 10th और 12th का जो बोर्ड एग्जाम्स है, यूपी बोर्ड के एग्जाम्स हो चुके थे, उनका एडमिशन शुरू हो गया था, सीबीएसई के 10th के लगभग पेपर हो चुके थे, उनका केवल कंप्यूटर साइंस का पेपर रह गया था, 12th के जरूर उनके पेपर रह गए हैं। और देखिए अभी तक तो कुछ जो इंस्ट्रक्शन है यही है कि लॉकडाउन के बाद जब भी समय मिलेगा, जब भी सरकार को लगेगा कि उचित समय है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अगर उनकी परीक्षाएं कराई जाए तो सके तो जल्दी जल्दी सीबीएसई की भी 10th-12th की परीक्षाएं होंगी। और एडमिशन जो सीबीएसई का चल रहा था वो चल ही रहा है और साथ साथ कॉपी करेक्शंस भी चल ही रहे हैं। जैसे 10th-12th का मेरे ख्याल से एग्जाम्स खत्म होंगे उनके रिजल्ट क्लियर होंगे। इनकेस अगर ये लॉकडाउन बढ़ जाता है या आपको लगता है या सरकार को लगता है कि स्कूल और एडमिशन बहुत ज्यादा लंबे समय तक अभी और टाइम लगेगा, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है शायद 10th के लिए भी कोई ना कोई सरकार इसी तरह की पॉलिसी ला सकती है। 12th की तो परीक्षाएं सरकार को करानी ही पड़ेगी,
क्योंकि
12th के पेपर कराने ही पड़ेंगे सरकार को, क्योंकि 12th एक ऐसा आपका है जिसके बाद आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जाते हैं।
बिल्कुल,
आपको नीट में आपको जाना है, आपको जेई में जाना है, इंजीनियरिंग के टेस्ट में जाना है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन लेने हैं, बहुत सारे बच्चे डीए में जाते हैं, तो उनके एडमिशन के लिए उनका एक स्टैंडर्ड है, वो उसमें कैसे कर जाएंगे? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हो सकता है संभव है, हालांकि परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि विदेश जाके पढ़ सकें, लेकिन अगर उसको जाना भी, किसी बच्चे को जाना भी है, किसी को उस पाइपलाइन में है उसकी, तो वो भी कैसे जा पाएगा जब तक उसकी 12th की परीक्षाएं और उसका परिणाम नहीं आ पाएगा।
बिल्कुल,
निश्चित तौर पर अभी गंभीर विषय है और इसमें सरकार को निर्णय लेना है, जो भी निर्णय सरकार लेगी उसमें हम सब लोग उसका साथ है। तैयार करिए।
अच्छा, एक सवाल और मेरे माइंड में आ गया है कि जैसे मान लीजिए सेशन लेट शुरू होते हैं, लेट रिजल्ट आएगा, सेशन लेट शुरू होंगे, तो क्या नेक्स्ट जो जब उनका दोबारा एग्जाम होगा मतलब लेट सेशन का, तो वो भी आगे तक बढ़ेगा या वो सेम टाइम पर ही होगा?
ये बहुत अच्छा सवाल है जो आपने पूछा। देखिए, एक हर विषय हर क्लास की हर स्टैंडर्ड की, चाहे वो क्लास 9th, 10th, 11th, 12th हो या स्कूल हो या हायर एजुकेशन हो या टेक्निकल एजुकेशन हो, एक लिमिटेड एक टाइम दिया जाता है कि आपको 200 दिन पढ़ाना है या आपको 200-250 दिन आपको साल में पढ़ाना है
जी।
तो आप, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, इसीलिए ये क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। क्योंकि मान लीजिए अगर स्कूल जुलाई में खुलते हैं, केवल आपको एक अंदाजा एक आइडिया दे, अगर स्कूल जुलाई में खुलते तो आपको जो बोर्ड एग्जाम है आपको जनवरी में स्टार्ट हो जाते हैं, फरवरी में लास्ट में, फरवरी फर्स्ट वीक में, जनवरी लास्ट में स्टार्ट हो जाते हैं, प्रैक्टिकल्स आपके दिसंबर से स्टार्ट शुरू हो जाते हैं, तो उन दिनों तक आपके 200-250 दिन होंगे नहीं। और उसी की पढ़ाई को, उनका बच्चों की उन टाइमिंग्स को, उनके करिकुलम जिससे उनका पूरा हो सके, इसीलिए हमने ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है, जिससे उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो और उस पूरे 200-250 दिन को, उस टाइम को, बल्कि 200-250 दिन एक टाइमिंग है, उस टाइम को बचाते हुए हम बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस करा के कैसे पढ़ा पाए, उसके लिए हमने इसीलिए करिकुलम को डिजाइन करके हम लोग पढ़ा रहे हैं। बल्कि हमने काफी स्कूल से उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, सरकार ने भी कई सारे पोर्टल्स को दे दिया है, उन्हें एप्लीकेशन डाल दी है। इनफैक्ट आपको जानकारी लाना चाह रहा हूँ, कर लीजिए, कुछ मेचोरिटी डिस्ट्रिक्ट ने कुछ चैनल्स भी स्टार्ट किए जिस पर क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन।
जी जी जी,
क्योंकि सभी जितने चैनल्स हैं आपके टाटा फाइव सब चैनल से आ रहे हैं, उन पे भी बच्चे पढ़ सकते हैं, पढ़ रहे हैं। तो वो एक ऑप्शनल तरीका है, ऑप्शन निकाला गया सरकार की तरफ से और हम लोगों ने भी प्रयास किया कि ऑनलाइन क्लासेस करें और उस करिकुलम को, उस टाइमिंग को हम लोग कंप्लीट कर पाए, जैसे कि उनकी जो परीक्षाएं हैं वो जनवरी फरवरी में जो होंगी और उस तब तक उनका करिकुलम पूरा हो जाए। अगली बात सही है, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि अगर ये नहीं हो पाता है तो क्या वो जनवरी फरवरी में हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। शायद जिस तरीके से हमारे 2020 में जनवरी में स्टार्ट हुई थी परीक्षा फरवरी में, शायद हो सकता है कि 2021 में परीक्षा थोड़ा लेट हो।
जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक अंतिम सवाल है जो काफी सभी लोग कर रहे हैं और सभी से जुड़ा हुआ है कि जो टीचर्स काम कर रहे हैं आपके यहाँ, उनकी सैलरी क्या प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन 40 दिन का हो गया है और ऐसे में आगे अगर बढ़ता है तो टीचर्स की सैलरी और स्कूल का फंड कहाँ से आप कर रहे हैं, कैसे हो रहा है?
देखिए, सबसे गंभीर विषय है इस समय और ये स्कूल के लिए भी, सभी इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ा प्रश्न है। सरकार ने चूंकि ऑलरेडी हम लोग इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं कि आप अपने जो अभिभावक हैं उनसे फीस के लिए गाइडलाइंस आई हैं कि आप अपने अभिभावकों से एक महीने की फीस, कई बच्चे स्कूल करते हैं, हम भी कई कुछ स्कूलों में ऐसा करते हैं कि 3-3 महीने की फीस एक साथ लेते हैं। सरकार ने इंस्ट्रक्शन दिए कि आप एक महीने की फीस आप अपने अभिभावकों से मांग सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं किताबा के किसी स्कूल एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ और मैंने ऐसे सभी स्कूल के अपने साथियों के साथ डिसीजन किया और हम लोगों ने शायद अभी तक तो हम लोगों ने अपने किसी भी पेरेंट्स से अभी तक ना तो हमने एक महीने की ना ही हमने उनसे भी फीस के लिए कहा है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनकी पिछली फीस भी बकाया है क्योंकि उनके फीस जो आती है वो रिजल्ट आने तक लोग दे पाते हैं, बाबा सुविधा अनुसार देते हैं, वो भी चूंकि रिपोर्ट कार्ड उनको मिल नहीं पाए हैं तो वो भी फीस नहीं आ पाई है। जिसकी वजह से ये निश्चित तौर पर तो बात है कि हम लोग अभी तक लगभग सभी स्कूल हैं जो अभी तक जो सैलरी नियमित रूप से दे रहे थे वो शायद अभी तक नहीं व्यवस्था बन पा रही सभी स्कूलों की। लेकिन जितनी भी जरूरत हो सकती है स्कूल के पास जितने अपने फंड्स हैं, अपने फंड से जरूरतमंद आवश्यकतानुसार और अपनी व्यवस्था अनुसार हम लोग अपने शिक्षकों की, हम लोग अपने साथियों की उनकी मदद भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं कि उनकी सैलरी जल्दी जल्दी दी जाए। इस परिस्थिति में हम लोग हालांकि मैं प्रयास करूंगा कुछ दिनों के अंदर अपने ग्राहकों से अनुरोध करूँ की जो सक्षम है जो दे सकते हो वो अपनी एक महीने की फीस दे दें, जिससे कि हम अपने टीचर्स को, अपने बाकी और नॉन टीचिंग स्टाफ को उनको सैलरी दे पाए। जिन स्कूलों के पास अपने पास कुछ फंड्स है जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं और हम लोग उनको अपने टीचर्स को सैलरी दे भी रहे हैं। सैलरी आप नहीं कह सकते पूरी सैलरी नहीं देता है, हम जो भी इनकी मदद हो सकती है वो अभी तो फिलहाल जितना जब तक स्कूल कोई कर पाएगा कर पाएगा। देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कूल जो है ना नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, किसी स्कूल के पास अपने कोई प्रॉफिट के फंड्स होते नहीं है कि आपके पास फंड्स हों, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है कि आपके पास प्रॉफिट हो जिससे आपको आपके पास सेविंग्स हो आप अपने अपने लोगों को आप उस पर आगे आगे सैलरी दे पाए। क्योंकि ये एक बहुत कठिन समय है सबके लिए, ये एक महामारी है जिसमें स्कूल भी सर्वाइव है, उसमें दिक्कत आ रही है, टीचर्स को भी दिक्कत आ रही है, हमारे पेरेंट्स को भी है, तो सबको साथ मिलकर चलना है, सबको प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे सबसे तरीके से सुविधा अनुसार लोग अपनी व्यवस्था अनुसार जितने भी हो कम से कम में, हम लोग भी प्रयास करते हैं कि जो हमारे अभिभावक हैं वो अगर एक महीने की फीस अगर दे पाएंगे, जितने भी अभिभावक दे पाएंगे उतनी तो हम लोग उसी के अनुसार हम भी व्यवस्था अनुसार कर पाएंगे। तो प्रयास कर रहे हैं कि जो सभी को हम लोग नियमित रूप से, क्योंकि वो भी एक परिवार है कि शिक्षक भी हमारे परिवार है, क्योंकि वो इतने सालों से हमारे साथ काम कर रहे थे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका भी ख्याल रखें। और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। और इन परिस्थितियों के बावजूद भी आप देखिए हमारे टीचर ऑनलाइन क्लासेस तो कर ही रहे हैं, ऑनलाइन स्कूल तो घर चल ही रहा है, परिस्थिति में वो घर से पढ़ा रहे हैं, तो वो टीचर्स तो हमारी सबकी जिम्मेदारी भी बनती है, उस पर हम काम कर ही रहे हैं सब लोग
जी। तो हमें उम्मीद है कि जो हमें सुन रहे हैं लोग हमारे इस पॉडकास्ट को, उन्हें इस विषय पर कि स्कूल और शिक्षा से जुड़े जितने भी क्वेश्चन दिमाग में होंगे उसका सबका ज्ञान हो गया होगा, नॉलेज मिल गया होगा। तो विवेक जी, इसी बात के साथ हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी।
थैंक यू सो मच।
भारत बोलेगा के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।
भारत बोलेगा, भारत बोलेगा, भारत बोलेगा, भारत बोलेगा।